जय धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंता नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भवे सौवसाहुवं मुनिय परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरैः सिद्ध विजयिन् या सन्तु वा भयवदी प्रसियौ सुयदेवया मज्जम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजो गोभाव्यो सम्मम् आवहै नाणसिद्धिम् नाणफलम् च विनिर्वाणम् तो सुवदेवयमिनमो तिक्पुत्रोपणमियूणभक्ति गोक्षामि जहासुक्तम् जारिक्तमोहसखणे। यह श्री वीरसेनाचार्य जी जयदेवला टीका है जो कषाय पौर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सोलहवीं पुस्तक में चारित्र मोक्ष अपना नाम का जो अर्थाधिकार चल रहा है उसमें है। अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 168 पर 168। यहाँ हम केवली समुद्यात के बाद की बात चल रही है। वहाँ योग का निरोध होता है तो पहले बादर योग होता है, तो उसमें से सर्वप्रथम बादर का योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है यानी वो सूक्ष्म बनाया गया सूक्ष्म होता है। इसके बाद बादर वचन योग से सूक्ष्म वचन योग होता है, फिर बादर उच्छ्वास से सूक्ष्म उच्छ्वास होता है और बादर काय का ही सूक्ष्म काय योग होता है। उसके बाद सूक्ष्म काय योग में रहता होता हुआ सूक्ष्म मणियोग का नाश हो जाता है ना, उसको एक किस विधि से नाश होता है वो अभी बताएंगे। फिर वचन योग का, फिर उच्छ्वास का, फिर बाद में काय योग का। तो यहाँ कहते हैं योग स्थान होते हैं ये वहां पर भी वर्णन है। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो योग समान योग वाले आत्म प्रदेश उनको एक वर्गणा कहेंगे। तो एक वर्गणा दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा ऐसे श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणा जाकर एक स्पर्धक होता है, फिर दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, ऐसे स्पर्धक भी श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण ये सब मिलकर एक योग स्थान कहलाता है। तो इन सबको पूर्व स्पर्धक कहेंगे। अभी इतना योग कम होता है कि इनको अभी इसी का नाम अभी अपूर्व स्पर्धक कहेंगे। तो एक समय में तो ये बात नहीं होती, पहले समय में सभी प्रदेशों में से कुछ प्रदेश ही योग वाले हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे पहले समय में अपूर्व स्पर्धक रचना की। तो ये बात हम यहाँ 168 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। चार लाइन पढ़ी थी, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्व स्पर्धक की या स्पर्धक यानी योग की बात चल रही है। सब वर्गणाओं से जीव प्रदेशों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण भागार रूप प्रतिभाग से अपकर्षण करके पूर्वोक्त अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति रूप से परिणमाकर उन अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। यानी यहाँ योग हीन हो जाता है। कितना हीन होता है उन्होंने बताया था कि जब मनोयोग है तो संगी पंचेन्द्रिय की जो जघन्य योग से भी असंख्यात विभाग हीन वाला, यानी असंख्यात गुणाहीन कहेंगे उसको, असंख्यात विभाग प्रमाण वाला, ऐसे हरेक के लिए कहाँ किसी के साथ कंपेयर करना हो उन्होंने बताया था। तो कहते है उसका भी नाश कर रहे हैं। अभी काय योग का भी क्या क्या करता है उसकी बात चल रही है। सूक्ष्म काय योग के द्वारा काय योग का निरोध करता है, वो पहले कर दिया मैंने। अभी योग का योग ही बाकी है और उसको भी सूक्ष्म का योग को भी नष्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों का अपूर्व स्पर्धकों में निषेक विन्यास का क्रम कहते हैं, यानी उसकी निषेक रचना कैसी है वर्गणाओं की उसके बताएंगे। यथा प्रथम समय में जीव प्रदेशों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करके अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में जीव प्रदेशों के बहुभाग का सिंचन करता है। हमेशा जैसे हमने वर्गणाओं में निषेकों में देखा था, पहला नीचे के निषेक में अधिक परमाणु होते, यहाँ परमाणु नहीं कहना प्रदेश के, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रदेश मिनिमम अनुभाग रूप से परिणमित हुए हैं, क्योंकि सबसे जघन्य शक्ति में परिणमन करने वाले जीव प्रदेशों के बहुत संभव होने में विरोध का अभाव है। यानी जघन्य शक्ति रूप से मैक्सिमम प्रदेश परिणमते हैं। दूसरी वर्गणा में विशेष हीन जीव प्रदेशों को जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग के अनुसार सिंचित करता है, यानी जितने नीचे के निषेक में कहो या वर्गणा में जीव प्रदेश है उसको जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग का भाग देकर उतने हीन द्वितीय वर्गणा में देते हैं। इस प्रकार सिंचन करता हुआ अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक जाता है। प्रति वर्गणा एक एक जैसे हीन प्रदेश वहां पाए जाते हैं। पुनः अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गणा से पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में असंख्यात गुणहीन जीव प्रदेशों को सिंचित करता है, क्योंकि उस रूप तो प्रदेश ऑलरेडी थे, जैसे हम कर्मों में देखते हैं अभी ये नए अपूर्व स्पर्धक बने हैं, वहां पूर्व स्पर्धक थे ही थे, तो उनमें फिर दोबारा उसमें से उस रूप से, क्योंकि उसके ऊपर के जो अधिक अनुभाग वाले हैं वो उनमें आ मिलते हैं, इसलिए वहां पर भी सिंचित तो देता है करता है, परंतु वो कितना है तो असंख्यात वे भाग प्रमाण। यहाँ पर हानि का गुणकार यानी अपूर्व स्पर्धकों के आदि अंत वर्गणा से पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा में कितना दिया तो असंख्यातवा भाग दिया, असंख्यात गुणहीन कहा ना, असंख्यातवा भाग दिया, तो यहाँ असंख्यात का प्रमाण कितना है तो कहते यहाँ हानि का गुणकार पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण होता हुआ भी साधिक अपकर्षण उत्कर्षण भागार प्रमाण होता है ऐसा जानना चाहिए। इसके कारण की गवेषणा सुगम है। उससे आगे समय के अविरोध पूर्वक यानी यथा आगम विशेष हानि रूप जिसको हम कहते चय घटते रूप जीव प्रदेशों के विन्यास क्रम को जानना चाहिए। इस प्रकार यह प्ररूपणा अपूर्व स्पर्धकों को करने वाले के प्रथम समय में होती है। ये प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक बने उसकी बात है, ये योग स्थानों की सब चर्चा चल रही है यहाँ पर। इस प्रकार द्वितीय आदि समयों में भी अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धकों की समय के अविरोध पूर्वक रचना करता है। इस प्रकार इस अर्थ को थ बराबर स्पष्ट करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, एवं अंतोमूत्तम अपूर्व फद्दयानी करेदी, इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धकों को करता है। यह सूत्र सुगम है, परंतु उन स्पर्धकों को प्रत्येक समय में असंख्यात गुणहीन क्रम से रचता है इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। आगे कहते असंख्यज गुणहीनाय सेढ़िये जीव प्रदेशानं च असंख्यज गुणाय सेढ़िये, उन अपूर्व स्पर्धकों की असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से और जीव प्रदेशों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से रचना करता है। यानी पहले ये प्रथम समय में जितने अपूर्व स्पर्धक बने उससे असंख्यात गुणाहीन असंख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक दूसरे समय में बने। देखो हम इसका भावार्थ देखेंगे, इस सूत्र का भावार्थ। प्रथम समय में रचे गए अपूर्व स्पर्धक कौन से? असंख्यात गुणहीन अपूर्व स्पर्धक दूसरे समय में उनसे नीचे रचता है। नीचे इसका अर्थ है उसका योग और तीन हो जाता है। पुनः दूसरे समय में रचे गए अपूर्व स्पर्धकों से असंख्यात गुणहीन अन्य अपूर्व स्पर्धकों को उनसे नीचे तीसरे समय में रचता है। इस प्रकार असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से अंतर्मूर्त काल के अंतिम समय तक जानना चाहिए, परंतु जीव प्रदेशों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से अपकर्षणा होती है, यानी कितने प्रदेशों में अपकर्षण होते हैं उसकी बात है। यहाँ पर यहाँ रचना करता है कि बदले में अपकर्षणा होती है, वो ठीक है। असंख्य ज गुणहीनाए श्रेणी है, जीव प्रदेशानम च असंख्य ज गुणाए श्रेणी है। क्योंकि पहले तो फद्दे यानी अपूर्व का अपूर्व स्पर्धक जो है वो असंख्य गुणाहीन होते हैं, नंबर ऑफ अपूर्व स्पर्धक।
आयाम हो गया।
हाँ आयाम, अपूर्व स्पर्धकों का आयाम और कितने प्रदेश नीचे आते हैं, अपकर्षित कितने होते हैं। तो हर समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा जीव प्रदेश अपकर्षित होते हैं। द्रव्य कहो ना, तो जीव प्रदेशों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से रचना लिखा है, परंतु यहाँ तो अपकर्षणा होता है ऐसे नीचे लिखा ना। जीव प्रदेशों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से अपकर्षणा प्रवृत्त होती है, प्राकृत में ऐसा नहीं लिखा था। असंख्य जो गुणाए श्रेणी है उपकडना, यानी ये रचना के बदले अपकर्षण करता है, ये अपने समझने के लिए पेंसिल से लिखते हो, क्योंकि रचना का अर्थ होता है नीचे नीचे उसके। रचना यानी उसके वर्गना में प्रति वर्गना में उसकी रचना होती है, वो नहीं है। अपकर्षण असंख्यात गुणा होता है। क्यों?
पहले के लिए रचना लगा करते, दूसरे के लिए अपकर्षण, रचना और अपकर्षण करते हैं। पहला असंख्यात गुणी शरीर रूप से इस पर
हाँ।
तो पहले के लिए रचना, फिर आगे और
अपकर्षण
का अपकर्षण कर दो तो भी चलेगा। इनको भी रख लिया, अपना भी रख लिया, की बात रखी।
क्योंकि अपूर्व स्पर्धक रचे जाते हैं और वहाँ जीव प्रदेशों का अपकर्षण होता है ना, उसके अभिभाग प्रतिच्छेदहीन हो जाते हैं। क्योंकि प्रथम समय में अपकर्षित किए गए प्रदेशों से दूसरे समय में अपकर्षित किए जाने वाले प्रदेशों की असंख्यात गुणा चाहिए। परम समय उपकड्डित प्रदेश तो भी समय उपकड्डित मान जीव प्रदेशान असंख्य ज गुण प्रमाण है, असंख्यात गुणा चाहिए, गुणहीन नहीं। असंख्यात गुणा प्रमाण से प्रवृत्ति देखी जाती है। योहीन निकालो और गुण को गुणा करो। इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में भी असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों की अपकर्षण ना जानी चाहिए। ये अपकर्षण आई ना, अब द्वितीय आदि समयों में भी अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों की निषेक संबंधी श्रेणी प्ररूपणा इस प्रकार जाननी चाहिए। पहले समय में तो पता है नीचे सबसे ज्यादा, फिर ऊपर विशेषहीन विशेषहीन, और पूर्व स्पर्धकों में असंख्यात विभाग होना। दूसरे समय में कैसे दिया जाता है उसको भी बताएंगे। यथा प्रथम समय में अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों से असंख्यात गुणे जीव प्रदेशों को इस समय अपकर्षित करके दूसरे समय में रचे जाने वाले अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में बहुत जीव प्रदेशों को रचता है। ये नए अपूर्व स्पर्धक, दूसरे समय के अपूर्व स्पर्धक, उससे आगे अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक विशेषहीन विशेषहीन रचता है। ये तो नीचे से ऊपर जैसे गोपुच्छा बनती है वैसी रचना हो गई। पुनः प्रथम समय में रचे गए हाँ यहाँ पर जगत श्रेणी के असंख्या तो भाग का प्रतिभाग था, हमने वो पहले देखा था। अब यहाँ कहते हैं पहले समय में जो अपूर्व स्पर्धक बने थे उन स्पर्धकों में जो जघन्य स्पर्धक है उसकी आदि वर्गणा में असंख्यात गुणहीन जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है, क्योंकि वहां स्पर्धक ऑलरेडी थे, उसमें हम कहीं साइड से उसको दे दिया मार। उससे आगे सर्वत्र विशेषहीन जीव प्रदेश निक्षिप्त करता है, क्योंकि वो पूर्व स्पर्धक भी थे परंतु उसकी और पहले समय के अपूर्व स्पर्धकों की एक गोपुच्छा हुई थी तो उसमें भी विशेषहीन दे देंगे। ये पहले तो पूर्व स्पर्धक रूप से रचना थी, ये पूर्व स्पर्धक नीचे अधिक ऊपर हीन प्रदेश थे। अपूर्व स्पर्धक बने तो पहले समय में इसके नीचे अपूर्व स्पर्धक बने, इस तरह से ये पहले समय में अपूर्व स्पर्धक बने, दूसरे समय में उसके नीचे और अपूर्व स्पर्धक बने तो उसमें जो वहां द्रव्य दिया जाएगा तो यहाँ सबसे नीचे सबसे ज्यादा द्रव्य दिया, फिर विशेषहीन दिया ऊपर तक। तो ये संपूर्ण अपूर्व स्पर्धक नए तैयार होने थे तो मैक्सिमम द्रव्य यहाँ दिया, ऊपर विशेषहीन दिया और यहाँ ऐसे इस तरह से दिया जाएगा, इसमें तो असंख्यात भागहीन दिया और ऊपर थोड़ा कम कम दिया, इस तरह इसकी गोपुच्छा हो जाएगी। जैसे कर्मों में हम देखते आए हैं वैसे यहाँ पर भी होगा, वहां पर भी अपूर्व स्पर्धक में इसी बात देखेंगे। यहाँ जीव प्रदेशों पर घटित कर रहे हैं और यहाँ योग की बात चल रही है। वो यहाँ असंख्यात भागहीन जो है यहाँ पर, ये पल्ले का असंख्यात और यहाँ जगत श्रेणी का असंख्यात। इसी प्रकार तृतीय आदि समयों में भी अपकर्षित किए जाने वाले जीव प्रदेशों की यही निषेक प्ररूपणा इसी रूप से जाननी चाहिए। अभी सब काल के द्वारा रचे गए अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण इतना होता है, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं अंतर्मूर्त तक ऐसे अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई तो कितने हो गए। अपूर्व फद्दयानी सेढ़ी असंख्य यदि भागो, ये सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यह सूत्र सुगम है। यहाँ सब जगह उन्होंने जगत, अभी तक हम जगत श्रेणी पढ़ते आए हैं और हम लिखते हैं जगत श्रेणी, यहाँ सर्वत्र जगत श्रेणी, अभी तक हम दो पेजेस में वही पढ़ते आए हैं। यहाँ उन्होंने जगत श्रेणी ऐसा ही लिखा है पर हम उसको जगत श्रेणी तो आधा करते हैं। तो अपूर्व फद्दयानी से वो पढ़ा था जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, यह सूत्र सुगम है। सेढ़ी वग्ग मूल सभी असंख्य यदि भागो, वे सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के वर्गमूल के भी असंख्यात भाग प्रमाण। जब जगत श्रेणी का असंख्यात भाग कहते हैं तो उसके असंख्यात के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, तो इसके प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यात भाग है क्योंकि इनसे असंख्यात गुणे पूर्व स्पर्धकों के भी जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग प्रमाण पने का निर्णय होता है। पूर्व स्पर्धक कितने थे तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, उससे भी ये कम बनते हैं इसलिए भी उसके प्रथम मूल के असंख्यात भाग प्रमाण होते ये सिद्ध होता है। अब ये अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात भाग प्रमाण है, इस बात का ज्ञान कराने वाले आगे के सूत्र को कहते हैं पूर्व फद्दयानम भी असंख्यजिति भागो सौवाणी अपूर्व फद्दयानम। ये संपूर्ण अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात भाग प्रमाण है, यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विशेषता है कि पूर्व स्पर्धकों में पल्लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण गुणहानियां संभव है। गुणहानि कितने कहते हैं, अमुक इतने स्पर्धक जाने पर वो आधा होने को गुणहानि कहेंगे, کیا آدھا ہوتا ہے یوگ کیا پردیش پردیشوں کی سنکھیا آدھی ہو جائے گی تو ہم کہیں گے گنہانی سے ایک گنہانی دو گنہانی تو کہتے وہ بھی کتنی ہوتی ہے پلے کے اسنکھیات بھاگ پرمان تو گنہانیاں ہوتی ہے ان میں ایک گنہانی ستھان میں جتنے اسپردک ہے ان سے بھی یہ اپورو اسپردک اسنکھیات گنہین پرمان جاننے چاہیے सूत्र में ऐसा कथन तो नहीं किया गया इसके बिना यह कैसे जाना जाता है समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि सूत्र के अविरुद्ध परम गुरु के संप्रदाय के बल से उस प्रकार से अर्थ की सिद्धि में विरोध का अभाव है और व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है ऐसा न्याय है इस प्रकार इस प्ररूपणा के अनुसार अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक अपूर्व स्पर्धकों को करने के काल का पालन करने वाले जीव के उस काल के अंतिम समय में अपूर्व स्पर्धक क्रिया समाप्त होती है यानी यहाँ तक अपूर्व स्पर्धक करने का कार्य किया इतनी विशेषता है अपूर्व स्पर्धकों की क्रिया के समाप्त होने पर भी पूर्व स्पर्धक सबके सब उसी प्रकार अवस्थित रहते हैं क्योंकि उनका अभी भी विनाश नहीं हुआ है क्या कहना चाहते हैं पूर्व स्पर्धक तो है तो वैसे ही है उसमें से कुछ कुछ साइड से हमने निकाल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका असंख्यात भाग वो अपनी जगह उसका ऊपर से घात नहीं हुआ है घात होकर अगर नीचे आते हैं जैसे हम स्थिति कांडक वगैरह में देखते तो ही उसके वो पूर्व स्पर्धकों की संख्या कम होती परंतु वो तो वैसे के वैसे विद्यमान है अपूर्व स्पर्धक नए बने यहाँ सर्वत्र स्थिति कांडक और अनुभाग कांडकों का तथा गुणश्रेणी निर्जरा को कथन पहले कहे गए का चाहिए वही मैं पढ़ रही थी अभी स्थिति कांडक और अनुभाग कांडकों का तथा गुणश्रेणी निर्जरा का कथन पहले कहे गए क्रम से ही जानना चाहिए ये स्थिति कांड घात तो स्थिति में हो रहा है यहाँ हम अभी योग समझ रहे हैं योगों का स्थिति से कोई संबंध नहीं लगाना है वो तो प्रदेशों में है और स्थिति और अनुभाग कर्मों में है मेरी बात और गुणश्री निर्जरा भी कर्मों में चल रही है तो उसका कथन जो पहले बताया था वैसे ही वो चलेगा क्योंकि संयोग करना संयोग हुआ संयोग हाँ जैसे कांडक घात होते हैं स्थिति कांडक घात होते हैं अंतर्मूल प्रमाण वाले जो हाँ क्योंकि संयोग केवली के अंतिम समय तक उन तीनों की प्रवृत्ति होने में प्रतिबंध का अभाव है यानी ये कहाँ तक चलेगा संयोग केवली के अंतिम समय तक इसके बाद अपूर्व करण विधि समाप्त हुई यानी अंतर मुहूर्त तक अपूर्व स्पर्धक करके वो क्रिया समाप्त हुई अभी भी पूर्व स्पर्धक भी पड़े अपूर्व स्पर्धक भी बने इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक करण के काल का पालन कर उसके बाद अंतर मुहूर्त काल तक पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धकों का अपकर्षण करके योग संबंधी कुष्ठियों की रचना करने वाले ये योग में भी कुष्ठी लगाना संयोग केवली जिनके आगे के प्ररूपणा प्रबंध के अनुसार बतलावेंगे कहते एक तो अंतमोत्तम किट्टियों कर दी जैसे कर्मों में लगाया था वैसे यहाँ कोई पुष्टिकरण चलेगा योगों के कारण इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक पुष्टियों को करता है पूर्व योग कम होता है यानी कुछ जीव प्रदेशों का होता है पूरा कम ओवरऑल नहीं कम होता क्योंकि पूर्व स्पर्धक अभी सभी के सभी बने एक भी स्पर्धक का नाश नहीं हुआ है मैक्सिमम योग जितने कितने प्रदेशों में वो तो है वहां पर क्योंकि योग सर्वत्र समान नहीं होता हर प्रदेश में अलग अलग योग है और उसकी अपेक्षा से ये रचना हुई है। ऊपर का जो मैक्सिमम योग वाला जो था, प्रदेश कितने थे, उनकी संख्या भले कमी हुई है परंतु वो सर्वथा नष्ट नहीं हुए सत्ता में से। यहाँ पर अभी तो कम होने की बात चल रही है, यहाँ ज्यादा होने का सवाल नहीं है यहाँ तो, परंतु मैक्सिमम वाला योग वो कम नहीं हुआ है, वो टोटल योगस्थान जो है अभी हीन की तरफ बढ़ रहे। तो कहते इसके अंतर्मूर्त इत्तो अंतोमूर्तम किट्टियो करे दी, इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियों को करता है, पूर्व और अपूर्व स्पर्धक रूप से ईटों की पंक्ति के आकार के स्थित योग का उपसंहार करके सूक्ष्म सूक्ष्म खंडों की रचना करता है, उन्हें कृष्टिया कहते हैं। जैसे हमने कर्मों में कृष्टि देखी थी वैसे यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेदों के आगे क्रमबुद्धि और हानियों का अभाव होने के कारण स्पर्धक के लक्षण से कृष्टि के लक्षण की यहाँ विलक्षणता जाननी चाहिए। स्पर्धक का लक्षण अलग है और कृष्टियों का अलग है, क्योंकि असंख्यात गुणी वृद्धि और हानि के द्वारा ही कृष्टिगत जीव प्रदेशों में योग शक्ति का अवस्थान देखा जाता है। जैसे हमने कर्मों में क्या देखा था, वर्गना वर्गना प्रति एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था और कृष्टि कृष्टि प्रति अनंत का था। यहाँ वर्गना वर्गना के प्रति पूर्व जो स्पर्धक रूप से जो थी एक एक अविभाग प्रतिच्छेद योग का डिफरेंस था, अभी एक एक पृष्ठी प्रति असंख्यात गुणा का डिफरेंस होगा। नीचे से ऊपर बताएंगे तो असंख्यात गुणा एक एक पृष्ठी होती है, और ऊपर से नीचे देखे थे असंख्यात गुणाहीन असंख्यात गुणाहीन, इसलिए यहाँ वृद्धि और हानि दोनों शब्द आए। हम नीचे से ऊपर बताते हैं तो नीचे से ऊपर असंख्यात गुणा योग है प्रत्येक पृष्ठी में, ऊपर से नीचे देखें तो असंख्यात गुणाहीन है। क्रम वृद्धि ने एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का क्रम से वृद्धि और क्रम से हानि नहीं होती, असंख्यात गुणा की होती है, वो गुणित प्रमाण में होती है। वहाँ तो क्रम से होती थी, यहाँ गुणित प्रमाण में होती, यही तो उसका लक्षण है। वर्गना वर्गना में क्या डिफरेंस था, क्रम से वृद्धि होती थी, यहाँ क्या होता है डायरेक्ट एकदम असंख्यात गुणा वाली होती है। हाँ, ये कृष्टि की विशेषता है। ये वृद्धि हानि यानी वृद्धि नीचे से ऊपर वृद्धि कहेंगे, ऊपर से नीचे हानि कहेंगे, इसलिए कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण वाली कृष्टियों को यह योग का निरोध करने वाला केवली अंतर्मूर्त काल तक करता है, यहाँ तक आगे हम कृष्टियों को करता है। योग निरोध किस तरह से होता है, पहले अपूर्व स्पर्धक बने अभी कृष्टि बन गए। इस प्रकार यहाँ पर इस सूत्र का यह सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। अब कृष्टियों के करो उसको, इसी लक्षण को स्पष्ट करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है। अपूर्व फद्दयाणम आदि वगणाए अविभाग प्रतिच्छेदाणम असंख्यज्यति भागम उपकड्डिज्यति, अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है। पूर्वोक्त अपूर्व स्पर्धकों की सबसे मंद शक्ति से युक्त जो आदि वर्गणा है नीचे की, ये सभी अपूर्व स्पर्धक बहुत सारे तैयार हुए तो नीचे की ये आदि वर्गणा है। अब उसके क्या होता है, आदि वर्गणा है उसके असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है, यानी उसका अर्थ क्या, उससे असंख्यात गुणहीन अविभाग प्रतिच्छेद रूप से योग शक्ति का आकर्षण करके उसके असंख्यात विभाग में स्थापित करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी इसका अविभाग प्रतिच्छेद कितना हीन होता है तो असंख्यात गुणा हीन हो जाता है, तभी तो उसको पृष्टि कहेंगे। یہ اکت کتھن کا تاتپر یہاں پر
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈپریسٹی بن رہی تو اسنکھیات بھاگ ہین اس کا یوگ شکتی
اسنکھیات بھاگ ہین نہیں انت اسنکھیات گنا ہین
اسنکھیات گنا
یا اسنکھیات گنا ہین اور وہ پرمانو کتنے ہیں وہ بھی اسنکھیات وبھاگ پرمانو ہوں
یہ بھی اسے کہتا ہے سب سے مند شکتی سے یوکت جو آدھی ورگنا ہے جو ایک دم نیچے والی ورگنا ہے
اس سے
دوستی تیار
ہے نہیں اس کے اسنکھیات وے بھاگ میں اس کا یوگ بن جاتا ہے یوگ کتنا ہوتا ہے اس کو بتانا ہے دیکھو آگے پڑھیں گے یہاں پر کرشٹیوں اور سپردکوں کے سندھی سمبندھی آدھی ورگنا سے نیچے کی اپر موسٹ کرشٹی ان کے جو پرمان ہے اس کو بتا رہے ہیں اس کو سندھی کہا نا یہ اپورو سپردکوں کی نیچے کی آدھی ورگنا اور اس کے نیچے ابھی کرشٹی بنی وہ سندھی اس سندھی کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر کرشٹیوں اور انوسپردکوں کے سندھی سمبندھی گنکار ابھیبھاگ پرتیچھیدوں کی اپیکشا پلوپم کے اسنکھیات وبھاگ پرمان ہے اس کے اسنکھیات وبھاگ پرمان بنی نا ابھی یہاں جو کرشٹی بنی تو بل اس میں پردیش کتنے اس کی بات نہیں چل رہی گی اس میں ابھیبھاگ پرتیچھید کتنے ہیں تو یہ جو آدھی ورگنا میں تھے اپوروسپردک کے اس کے اس کو پلے کے اسنکھیات بھاگ سے بھاگ دو اتنے پرمان
جو
پلے کا اسنکھیات بھاگ گنا اس پرکار ابھیبھاگ پرتیچھیدوں کا اسنکھیات گنہانی کے دوارا اپورتن کر کے کرشٹیوں کو کرتا ہوا ایک کرشٹی نہیں ہوئی انیک کرشٹی بنی تو پرتی کرشٹی وہ نیچے نیچے جائیں گے تو اسنکھیات گنہین اسنکھیات گنہین ہوگا प्रथम समय में कितने जीव प्रदेशों को पुष्टि रूप से आकर्षित करता है ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं जैसे पूर्व स्पर्धकों में उसको असंख्यात भाग प्रमाण नीचे आए थे जीव प्रदेश वैसे यहाँ पर बताएंगे अभी कितने जीव एक समय में कितना होता है तो जितने जीव प्रदेश अभी किस रूप से पूर्व पूर्व स्पर्धक रूप से योग की अपेक्षा अब उसमें से कृष्टि बनेगी यानी कुछ जीव प्रदेशों में इतना योगहीन हो जाएगा तो कितने जीव प्रदेशों में एक समय में होगा तो कहते जीव प्रदेशानम असंख्यज्यति भागम ओकड्डति जीव प्रदेशों के असंख्यात वे भाग का आकर्षण करता है टोटल जीव प्रदेश तो उतने के उतने उसमें तो कुछ निर्जरा निर्जरा होने वाले नहीं है उसके तो योगों की अपेक्षा प्रदेश रचना अलग अलग होगी तो लोक प्रमाण तो जीव प्रदेश है उसके असंख्यात विभाग प्रदेशों के पृष्टि रूप रचना होगी देखो पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों में अवस्थित लोक प्रमाण जीव प्रदेशों के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव प्रदेशों का पृष्टि करने के लिए आकर्षित करता है जीव प्रदेशों को चाहिए या आकर्षण चाहिए करो ना असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव प्रदेशों को सेकंड लाइन को पुष्टि करने के लिए आकर्षित करता है यह उक्त कथन का तात्पर्य है को आकर्षित करता है ना का कहेंगे तो आकर्षण करता है कहना पड़ेगा यहाँ प्रतिभाग आकर्षण उत्कर्षण भागार रूप है कितना असंख्यात तो कहते आकर्षण उत्कर्षण भागार से भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण अपकर्षित होगी शंका इस प्रकार अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों का पृष्ठियों में किस रचना विशेष रूप से निक्षिप्त करता है यानी वो कैसी रचना होती तो नीचे के पृष्ठ में ज्यादा ऊपर कम वो तो बताएंगे अभी समाधान कहते हैं प्रथम समय में पृष्ठियों को करने वाला योग निरोध करने वाला जीव पूर्व स्पर्धकों में से और अपूर्व स्पर्धकों में से सभी जीव प्रदेश पूर्व अपूर्व स्पर्धक रूप से उनमें से पल्लोपम के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग से जीव प्रदेशों को आकर्षित कर प्रथम कृष्टि में बहुत जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है प्रथम यानी नीचे वाले जैसे हमेशा रचना होती है दूसरी पुष्टि में विशेषहीन जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। तो ये विशेषहीन का प्रमाण कितना ऐसे पूछ रहे शंकाकार। यहाँ पर प्रतिभाग का प्रमाण क्या है? समाधान, यहाँ पर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण निषेक भागहार प्रतिभाग का प्रमाण है। निषेक भागहार कहते उसको है, अभी जो नीचे की कृष्टि बनी है उसमें जितने प्रदेश है उसको जिस भागहार से भाग देने पर चय का प्रमाण आता है ना, कितने हीन है, तो कहते उसका भागहार कौन सा है? जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण, उससे भाग देने पर जो संख्या आएगी उतना वो विशेषहीन है। इस प्रकार निक्षेप करता हुआ अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक निक्षेप करता जाता है। अब अंतिम कृष्टि के ऊपर क्या है? अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा नीचे की है? तो पुनः अंतिम कृष्टि से अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में असंख्यात गुणहीन जीव प्रदेशों को सिंचित कर उससे आगे विशेष हानि रूप से सिंचित करता है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी स्पर्धक वर्गणाएं सब थी, नीचे तो कृष्टियां नहीं बननी थी, इसलिए उसमें ज्यादा प्रदेश दिए, ऊपर असंख्यात गुणहीन असंख्यात विभाग प्रमाण और ऊपर सर्वत्र विशेषहीन। अब ये तो पहले समय में इतना हुआ, दूसरे समय में प्रथम समय में अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों से असंख्यात गुणे जीव प्रदेशों को अपकर्षित करके प्रति समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणे जीव प्रदेश अपकर्षित हो गया। उस काल में रची जाने वाली प्रथम अपूर्व पुष्टि में इसको अपूर्व पुष्टि का पहले समय में हुई वो पूर्व पुष्टि बन गई है, अब नई कृष्टि बनी ना उसको अपूर्व पुष्टि कहेंगे। बहुत जीव प्रदेशों को सिंचित करता है। दूसरी कृष्टि में असंख्यात वे भाग प्रमाण विशेष हीन जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। इस प्रकार निक्षेप करता हुआ दूसरे समय में की जाने वाली अपूर्व कृष्टियों की अंतिम कृष्टि तक निक्षिप्त करता है। जैसे हमें स्पर्धकों में देखा था वैसे अभी अभी इसको कृष्टि समझो, ये पहले समय की कृष्टि थी, ये दूसरे समय में बनी, तो नीचे सबसे ज्यादा फिर विशेष ही विशेष। अब ये पहले की पूर्व कृष्टि थी, वहां पर उसमें भी थोड़ा दे देंगे, वो कितना असंख्यात वा भाग प्रमाण दे देंगे वहां पर। देखो पुनः दूसरे समय में पहले की अंतिम कृष्टि से प्रथम समय में रची जाने वाली अपूर्व कृष्टियों की जो जघन्य कृष्टि है उसके ऊपर असंख्यात वे भागहीन जीव प्रदेशों को सिंचित करता है। क्योंकि उसमें पूर्व में निक्षिप्त किए गए जीव प्रदेश मात्र और एक कृष्टि विशेष मात्र निक्षिप्त करता है। इससे आगे सर्वत्र अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक विशेषहीन ही जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। कृष्टि और स्पर्धक की संधि में पूर्वोक्त क्रम ही कहना चाहिए, मैंने कृष्टि में वो पहले समय की कृष्टि और अभी पहले के स्पर्धक, इसमें ऐसे विशेषहीन दे दिया जाएगा। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से अपूर्व कृष्टियों को रचता है। असंख्यात गुणी का असंख्यात गुणहीन अपूर्व कृष्टिया तो असंख्यात गुणाहीन हो जाएगी। पूर्ण कहाँ हीन लिखा है? ऊपर एवं अंतोमोत्तम इत कालम असंख्यज गुणहानी शेरी अपूर्व किट्टियों निवत्ते भी हानि होनी चाहिए। हाँ असंख्यात गुण हानि श्रेणी रूप से गुणी नहीं चाहिए, संख्यात गुणहीन करो या गुणहानि करो। अपूर्व कृष्टियों को रचता है, पहले समय में जितनी अपूर्व कृष्टि बनी उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण दूसरे समय में फिर तीसरे समय में इसलिए घटते हुए, परंतु पुष्टिकरण काल के अंतिम समय तक पुष्टियों में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों को सिंचित करता है, यानी जीव प्रदेश असंख्यात गुणा पुष्टि रूप से हो रहे, परंतु पुष्टियों की संख्या अपूर्व पुष्टियों की संख्या असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है और वो और लंबी लंबी होती है, यानी उसमें जीव प्रदेश मैक्सिमम आ जाते हैं। अब इसी अर्थ के स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। इत्थ अंतम उत्तम करेदि किट्टियो असंख्य जो गुणाए सेड़िए, यहाँ पर असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कृष्टियों को अंतर्मूर्त काल तक करता है। यहाँ पर असंख्य गुणाए सेड़िए किट्टियो करेदि, गुणहीनाएं चाहिए ना, 174 निकालो, सूत्र देख लो पहले, पीछे करेक्शन कुछ नहीं है ना, इत अंतम उत्तम करेंगे किट्टी असंख्य जो गुणाए सेड़िए, गुणाए लिखा है, जीव प्रदेशानम असंख्य जो गुणाए सेड़िए, दोनों को असंख्य जो गुणा के मैंने कृष्टियों को भी असंख्यात गुणा कहा और जीव प्रदेशों को भी यहाँ असंख्यात गुणा कहा। ना अंतर्मूर्त काल तक यहाँ लिखा ना, इतना अंतमोत्तम करेदी किट्टियों असंख्य जो गुणाएं सेड़ी है, यहाँ पर असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से पुष्टियों को अंतर्मूर्त काल तक करता है, यह सूत्र सुगम है। और जीव प्रदेशानम असंख्य जो गुणाएं सेड़ी है, असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों को करता है, यह सूत्र भी सुगम है। अब यहाँ पर रची जाने वाली पुष्टियों में अधसन अधसन पुष्टियों से उपरिम उपरिम पुष्टियों का कितना गुणकार होता है, ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए आगे के सूत्र द्वारा पुष्टियों के गुणकार के प्रमाण का निर्देश करते हैं। ये हमने जो असंख्यात गुणहीन लिखा है, यहाँ तो असंख्यात गुणा लिख रहे हैं। हम अगर यहाँ असंख्यात गुणा लिखा है ना, जरा हम लब्धि सर्च आए तब तक हम आगे पढ़ेंगे। नहीं नहीं लब्धि सर,
नया वाला पढ़ा।
अच्छा अच्छा, आप दे दो, दे दो, नया ही दे दो। पुराना दिखता है तो पुराना दे दो, नहीं तब तक देख लो ना उसमें क्या है। सपना सारण समुदाय के प्रथम समय में की हुई कृष्टियों का प्रमाण एक स्पर्धक में जितना वर्गणा उनका प्रमाण है उसके असंख्यात विभाग में, प्रति समय पूर्व में की हुई कृष्टियों के नीचे असंख्यात गुणा घटते क्रम से नवीन कृष्टि करते हैं, असंख्यात गुणा घटते क्रम से असंख्यात गुणा हीन चाहिए।
अगर नहीं घटेंगे
यहाँ निर्जरा क्यों कर रहे हो?
निर्जरा नहीं मतलब निर्जरा नहीं गुणशनी रचना
अंतमोत्तम करे रही किट्टी असंख्य जो गुणा है शेरी है जो लिखा है ना इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि पृष्ठियों में जो असंख्यात गुण अविभाग प्रतिच्छेद वो तो होता ही नीचे से ऊपर परंतु वो नंबर ऑफ पृष्ठियां जो हो हाँ कम होती क्योंकि ऊपर लिखा है ना एवं अंतमोत्तम इत कालम असंख्य जो गुणहानि शेरी अपू वो किट्टियों निवत्ते जीव पदे से पुनः असंख्य जो गुणाए शेरी उपड़ी न किट्टी सुनिशिंजती जाव किट्टी करण दाय चरिम समोत्ति संपही एदस्य एव अर्थस्य पुडीकरणम उत्तर तो सुत्त पबंधु इसी अर्थ को लिखने के लिए सूत्र बताया उन्होंने अर्थ पहले स्पष्ट कर दिया यही अपना उस हाँ तो यहाँ सूत्र में भी करेक्शन करना इत अंतमोत्तम करेदी किट्टी असंख्य गुणहीना ये शेरी पहले जो बात आई थी ना पूर्व स्पर्ध गुण के बारे में निकालो वो सूत्र अपूर्व स्पर्धक करते
हैं
देखो 169 असंख्य जो गुणहीना है शेरी है जीव परेशान के असंख्य जो गुणा है शेरी है यानी अपूर्व स्पर्धक तो असंख्य जो गुणहीना है शब्द है असंख्यज गुणहीनाए गु और ना के बीच में गुण ही न ही शब्द डालना न ही तो गुणहीनाए ना तो आगे है ही पहले सूत्र में करो ना असंख्यज गुणहीनाए न और ही दीर्घ ही नहीं वो बराबर है जीव प्रदेशानम असंख्य जो गुणाएं से वो बराबर है गुणहीन है ना ये शब्द तो यहाँ पर असंख्यात गुण है ना असंख्यात गुणहीन गुणहीन श्रेणी रूप से कृष्टियों को अंतर्मूर्त काल तक करता है इसके लिए हमने लब्धि सार देखकर भी वो कंफर्म कर दिया यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको चेक कर ख्याल में क्या सुधारना करने क्या मंजूबेन ऊपर का सूत्र है इत अंतमुत्त करेदी किट्टियो असंख्यज गुणहीनाए चाहिए और नीचे उसी के भाषांतर हिंदी में है वहां पर भी यहाँ पर असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से कृष्टियों को अंतर्मुत्त काल तक करता है बड़े आगे वो हिंदी में असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से और जीव प्रदेशानम असंख्य जो गुणाए शेरी वो बराबर है असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों को करता है यह सूत्र भी सुगम है अब यहाँ पर रची जाने वाली कृष्टियों में अदस्थन अदस्थन कृष्टियों से उपरिम उपरिम कृष्टियों का कितना गुणकार होता है अब यहाँ कृष्टियों का गुणकार ने अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण असंख्यात गुणा कहा ना तो उस असंख्यात का प्रमाण कितना है ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए आगे के सूत्र द्वारा पृष्ठियों के गुणकार के प्रमाण का निर्देश करते हैं किट्टी गुणगारो पलिदोमस असंख्य जदि भागो पृष्ठी गुणकार पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है नीचे की कृष्टि से उसके एडजेसेंट इमीडिएट ऊपर की जो कृष्टि है वो तो पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा उसमें अविभाग प्रतिच्छेद किसके योगों के उक्त कथन का यह तात्पर्य है अभी 175 पर जघन्य कृष्टि के सदृश धन वाली कृष्टियां असंख्यात जगत प्रमाण जगत प्रतर प्रमाण है। यानी जो जगन्य कृष्टि में कितने प्रदेश है जीव के, तो जगत प्रतर को असंख्यात गुणा करो उतने हैं। टोटल जीव प्रदेश कितने हैं? जगत प्रतर को कितने से गुणा करेंगे तो टोटल जीव प्रदेश आएंगे? जगत प्रतर को किस संख्या से गुणा करेंगे तो टोटल जीव प्रदेश आएंगे? जगत श्रेणी से, क्योंकि जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय जगत श्रेणी इज इक्वल टू टोटल एक लोक। अब यहाँ कहते पूरे जगत श्रेणी से नहीं गुणा किया, विशिष्ट असंख्या से गुणा किया। तो नीचे की सबसे नीचे कृष्टि उसमें प्रदेश कितने हैं? तो सदृश धन वाली कितनी है? तो कहते असंख्या जगत प्रतर प्रमाण है। हाँ, जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय असंख्या, और यानी बाकी ऊपर के सब मिलकर वो श्रेणी के जितने असंख्यात विभाग प्रमाण है उतने उसमें पाए जाएंगे, कृष्टिया स्पर्धक सब मिलकर। यानी सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव प्रदेश उसमें आ गए। हाँ, जगत प्रतर इंटू असंख्यात, और बाकी रिमेनिंग प्रदेश की सब ऊपर की रचना हो गई। यहाँ सदृश धन वाली कृष्टियां क्यों कहा? एक कृष्टि के सदृश धन वाली कृष्टियां, उसमें तो प्रदेश कहने थे, ठीक है, फिर भी ऊपर उन्होंने किट्टियों ही लिखा है। वहां एक जगन्य कृष्टि के योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदों को, अब यहाँ योग बताया जाए, पहले उसमें प्रदेश कितने उसको बताया, अब उस एक जगन्य कृष्टि का योग कितना है, तो जितना वो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको पल्लोपम के, कहाँ हो गया, पल्लोपम के असंख्यात वे भाग से गुणित करने पर एक जीव प्रदेश के आश्रय से जगन्य कृष्टि के अनंत उपरिम एक कृष्टि में योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्या कहा? ये जगन्य कृष्टि, उसमें इतने सारे जीव प्रदेश है, एक एक प्रदेश में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है सबका समान है, तो ये सब दूसरी कृष्टि है, उसके एक एक प्रदेश में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है, इस एक प्रदेश में जितना था उसे ये असंख्यात गुणा है। टोटल अविभाग प्रतिच्छेद सबका टोटल इकट्ठा करके नहीं बताया, एक एक प्रदेश का बताया, इसलिए एक प्रदेश की अपेक्षा बात की। यहाँ पर भी ऊपर अपने समझने के लिए जो सदृश धन वाली कृष्टियां लिखा है ना, वहां प्रदेश होना चाहिए था। पेंसिल से करो, पहली लाइन, जगन्य कृष्टि के सदृश धन वाले प्रदेश असंख्या जगत प्रमाण है, और एक जगन्य कृष्टि के योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदों को, यानी एक एक प्रदेश में जितना योग है उसको पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करने पर दूसरी कृष्टि के एक एक प्रदेश में इतने अविभाग प्रतिच्छेद है, असंख्यात गुणा
है
नेचुरली, तभी तो उसको कृष्टि कहा ना, असंख्यात गुणा है, प्रदेश कम है परंतु प्रति प्रदेश अविभाग प्रतिच्छेद योगों के असंख्यात गुणा है। कौन सा असंख्यात लगाना है यहाँ पर? पल्ले का असंख्यात। इसी प्रकार दूसरी आदि कृष्टियों में भी अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक गुणकार प्ररूप ना जानी चाहिए, इसी गुणकार के रूप में वो सभी एक के ऊपर एक कृष्टि पड़ी। पुनः एक अंतिम कृष्टि के योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेदों को पल्लोपम के असंख्यात विभाग से गुणित करने पर अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में एक जीव प्रदेश के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ये इसी वहां देने अपूर्व स्पर्धक में और उसमें इतना डिफरेंस है। इसके आगे जीव प्रदेश आगमानुसार अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार एक जीव प्रदेश का आश्रय कर कहा है। जघन्य जितनी वृद्धि हो सकती है उसमें उतनी होगी।
जगन्य
एक एक कहेंगे हम उसको, पर तो वो कितना है वो कैसे न, क्योंकि उसको विशेष अधिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। स्पर्धकों में क्या था, एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में प्रति प्रदेश योग के अविभाग प्रतिच्छेद विशेष अधिक है, उसमें एक अधिक कहो या विशेष अधिक कहो, यानी योग विशेष अधिक है उसी को हम एक अविभाग प्रतिच्छेद मानेंगे। अथवा जघन्य कृष्टि को पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर दूसरी कृष्टि होती है, इसका अर्थ क्या है, ये पूरे ही पृष्ठ का जो टोटल यहाँ मान लेते 100 प्रदेश है, एक में इतने अविभाग एक स्तंभ है, तो 100 में 100 एक सौ है, और ऊपर प्रदेश भले कम है परंतु यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद कितने हो जाए, एक के बदले असंख्यात एक सौ हो गए, और वहां मान लेते 98 प्रदेश हो गए, तो वो भी असंख्यात गुणे होंगे ना, यहाँ तो एक इंटू सौ थे, यहाँ असंख्यात एक इंटू 98 के, फिर भी वो कितना हुआ, टोटल भी असंख्यात गुना हुआ, ऐसे प्रतिपुष्टि असंख्यात गुना हो जाएगा। वहां एक एक प्रदेश की अपेक्षा बताया, यहां पूरे कृष्टि की अपेक्षा बताया। इस प्रकार अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक यह गुणकार जानना चाहिए, यह गुणकार जब तक सदृश धन वाली कृष्टियां हैं उनको देखकर कहा है, ये सदृश धन वाली कृष्टियों को ही वो प्रदेश उसमें सदृश धन वाले है ऐसा कह दे। पुनः अंतिम कृष्टि के सदृश धन वाले पूरे अविभाग प्रतिच्छेद समुदाय से, ये अविभाग प्रतिच्छेद समुदाय को हमने यहाँ वर्ग यानी एक प्रदेश कहा, समूह लिया ना उसका, सदृश धन वाले अविभाग प्रतिच्छेद समुदाय से अपूर्व यानी पूरा समूह लिया, पूरे अंतिम कृष्टि के सभी प्रदेशों में जितना टोटल अविभाग प्रतिच्छेद है उससे अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में सदृश धन वाले सब अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह असंख्यात होना चाहिए, अपूर्व स्पर्धकों में असंख्यात होना चाहिए ना। देखो पुनः एक चरिम किट्टीए जोगा विभाग प्रतिच्छेदे पलितों में से असंख्य जी भागी ने गुणी दे, अपूर्व पद्यानम आदि वगणाए एक जीव पदेशा विभाग प्रतिच्छेदा होती नहीं, या नहीं ये नीचे के गुणकार में चाहिए ना, नीचे के पैराग्राफ पढ़ रहे थे के ऊपर का ही पढ़ रहे थे, अच्छा तो कहते सरी सही सब अविभाग पुनः चरिम किट्टीए सरिस धनीय सौ अविभाग परिच्छेद समुयादादो अपूव फद्दयादि वगणाय सरिस धनीय सौ अविभाग परिच्छेद समूह असंख्येज गुणहीनोत्तिवत्तवो वरिम अविभाग परिच्छेद गुणकारादो हेठिम जीव पदेश गुणकारस असंख्येज गुणत्तदंसनादो। हाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ इससे जो जीव प्रदेशों का गुणकार है वो असंख्यात गुणा है, एक एक प्रदेश की अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात वे भाग प्रमाण, परंतु यहाँ जीव प्रदेश असंख्यात गुणा है इसलिए टोटल नहीं है इसकी, नहीं समझे, यहाँ एक प्रदेश में इतने तो इतने प्रदेशों में कितना होगा ये उसकी टोटल, उससे यहाँ पर असंख्यात विभाग प्रमाण प्रदेश दिए जाते हैं ना यहाँ पर, तो वहां उसलिए कहते हैं असंख्यात गुणाहीन होता है, तो यहाँ कहते हैं उसके कारण बताते हैं, उपरिम अविभाग प्रतिच्छेद गुणकार से अधस्तन जीव प्रदेश गुणकार असंख्यात गुणा देखा, मान लेते हैं यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद कितना बड़ा, असंख्यात गुना बड़ा, तो हम कहेंगे 10 अभी कितना गुना बड़ा, 40 गुना बड़ा, परंतु यहाँ नीचे प्रदेश कितने हैं तो कहते कि 40 के बदले 400 गुना है, तो टोटल अजोगा प्रतिच्छेद नीचे का ज्यादा होगा, ऊपर का कम होगा, ये कहना चाहिए। भले एक एक प्रदेश की अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेद हमने 40 गुना देखा, परंतु नीचे के प्रदेश 400 गुना है, तो उसकी ग्रैंड टोटल ऊपर कम होती है, नीचे ज्यादा। ऊपर अविभाग प्रतिच्छेद पर प्रदेश असंख्यात गुना है, तो हमने उसको 40 गुना कहा, परंतु नीचे टोटल नंबर ऑफ प्रदेश असंख्यात गुना है, तो 400 गुना है। अविभाग प्रतिच्छेद वहां 40 गुना भले हुए है, परंतु वहां प्रदेश कम है और यहाँ प्रदेश ज्यादा है, इसलिए यहाँ की ग्रैंड टोटल ज्यादा है, वहां की कम है। भले एक एक प्रदेश में अविभाग प्रतिच्छेद ऊपर ज्यादा है, फिर भी टोटल प्रदेशों की अपेक्षा से ये बात बताई जाती है। वो बराबर उसी को हमने ऊपर से पढ़ा, असंख्य जो गुणहीन होते वत्त वो, और उसका आगे उन्होंने कारण भी बताया कि उवरिम अविभाग परिच्छेद गुणगारादो हेठिम जीव पदेश गुणगारस्य असंख्य जो गुणत्व दंशनादो, ये उसका रीजनिंग भी बताया। शंका, यहाँ पर गुणकार का प्रमाण क्या है, ये जो असंख्यात गुणाहीन टोटल अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है उसका क्या गुणकार है, तो यहाँ पर गुणकार का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग है, शेष कथन जानकर कहना चाहिए। यानी इतने अधिक संख्या में वहां कृष्टिया बनती है इतने प्रदेशों की, इस प्रकार कृष्टि गुणकार के प्रतिपादन द्वारा पृष्ठियों के लक्षण का प्ररूपण करके अब अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा रची जाने वाली इन योग संबंधी पृष्ठियों के प्रमाण विशेष के अवधारण करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। यानी पहले पृष्ठियों का लक्षण बताया उन्होंने, अब उसकी जो रचना होती है, हाँ तो कितनी होती है क्या वो बताएंगे अभी। किट्टी और सेड़ी है असंख्य यदि भागो, हमने अपूर्व स्पर्धक भी कितने होते तो श्रेणी के असंख्य, अभी सबके लिए वही पर वो भी हीनाधिक हो गए। पहले हमने देखे ना पूर्व स्पर्धक में से अपूर्व स्पर्धक बने कितने बने तो श्रेणी के असंख्यात विभाग बने, अब यहाँ कहते कृष्टि कितनी बनी तो वो भी श्रेणी के असंख्यात विभाग, वहां कितनी बनी थी एक स्पर्धक में उसके असंख्यात विभाग प्रमाण बने, अब यहाँ कहेंगे एक स्पर्धक की वर्गणा के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये कहेंगे शायद कर्मों में बताया था ना वैसे यहाँ, अब ये बताएंगे आशा है। किट्टियो सेड़िये असंख्यात यदि भागो, योग संबंधी कृष्टिया जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण इसके इनके जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण की सिद्धि निर्बाध रूप से उपलब्ध होती है। अब इनका अपूर्व स्पर्धकों से भी असंख्यात गुणहीन पना अविरुद्ध है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हमने देखे थे पूर्व स्पर्धक जितने थे कितने होते हैं हमेशा तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, उससे अपूर्व स्पर्धक कितने बने उसके भी असंख्यात विभाग, अब कहते अपूर्व स्पर्धकों से भी कृष्टियों की संख्या उसके असंख्यात विभाग होगी, तो उसको असंख्यात गुणहीन कह दिया, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो कहते अपूर्व फद्दयाणम भी असंख्य यदि भागो, वे योग संबंधी कृष्टियां अपूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण है, एक गुणहानी स्थानांतर की स्पर्धक शला का हमने देखा था, एक गुणहानी में जितने स्पर्धक होते हैं उसको कहेंगे एक गुणहानी स्थानांतर की स्पर्धक शला, इसका अर्थ क्या है, इतने स्पर्धक जाने पर जीव प्रदेशों की संख्या आधी होती है। तो कहते उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक होते हैं। अभी हमने जब पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों की बात की थी तो पूर्व स्पर्धक में तो गुणहानियां जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग होती है, और एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण तो अपूर्व स्पर्धक बने थे। वही बात यहां दोहरा रहे। तो कहते जिसको कहेंगे ना एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उसके भी असंख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक होते हैं, और आगे का भी कहे पुनः इनके भी असंख्यात विभाग प्रमाण। ये योग कृष्टियां एक स्पर्धक संबंधी वर्गणाओं के असंख्यात विभाग प्रमाण जाते हैं। एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी होती है तो वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, उसके भी असंख्यात विभाग प्रमाण, ये नंबर ऑफ पृष्टियां बनती है। इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है। इस प्रकार पृष्टियों को करने के लिए अंतर्मूर्त काल का पालन करने वाले इस जीव के पुष्टिकरण काल के यथाक्रम समाप्त होने पर यह अंतर्मूर्त तक उसको पुष्टिकरण किया जाता है। किसका? योग का। उसके बाद अनंतर काल में जो प्ररूपणा विशेष है उसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। किट्टीकर्णध्य निच्छिदे से काले पूर्व फद्दयाणी अपूर्व फद्दयाणी च नासेदि। पुष्टिकरण काल के समाप्त होने पर अनंतर समय में पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों का नाश करता है, यानी अंतिम समय तक तो वो उसके अभी प्रेजेंस था, अंतिम समय में वो पुष्टि रूप से हो गए, अब उसका नाश देखा जाएगा। जब तक पुष्टिकरण के काल का अंतिम समय है तब तक पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक अविनिष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी उनकी सत्ता दिखाई देती है, क्योंकि उनके असंख्यात वे भाग प्रमाण ही सदृश धन वाले जीव प्रदेशों का प्रत्येक समय में पुष्टिकरण रूप से परिणमन उपलब्ध होता है। यानी प्रति समय कितने परमाणु कितने प्रदेश पुष्टि रूप से होती है तो असंख्यात विभाग प्रमाण। पुनः तदनंतर समय में सभी पूर्व और अपूर्व स्पर्धक अपने स्वरूप का त्याग करके पुष्टि रूप से परिणमन करते हैं, क्योंकि जघन्य पुष्टि से लेकर उत्कृष्ट पुष्टि के प्राप्त होने तक उन पुष्टियों में सदृश धन रूप से उनका उस काल में परिणमन का नियम देखा जाता है। अंतिम समय में क्या होता है, जितने पूर्व अपूर्व स्पर्धकों में जितना प्रदेश है वो सारे के सारे अभी तक जितनी पुष्टि बनी है जगन्य से ऊपर तक पहले समय से लेकर अंतिम समय तक उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस प्रकार पुष्टिकरण काल समाप्त हुआ। अब इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक पुष्टिगत योग वाला होकर, यानी इतना सूक्ष्म योग हो गया, कैसा हुआ? पुष्टिगत योग हुआ। अभी उसका किया तो उसको वेदन करेगी कि नहीं करेगी? तो सहयोगी काल में जो अवशेष काल रहा, अभी भी सहयोगी चीज चल रही है ना, योग है, उसका पालन करता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है। कोई करेक्शन है क्या? 177 अब पुष्टिगत, यह सूत्र गतार्थ है। अब पुष्टिगत पहले भी आया था ना कुछ, यह सूत्र गतार्थ है, ये ऐड करना है इसमें। 74 भी गयत्थमेदम सूत्रम वो भी पहले पर भी कुछ था क्या? उन्होंने कर दिया, कर दिया
होगा। यहाँ पे बीच में एक जो पावर वाला है उसके नीचे बोल दी इतना ही गेट करना है, इससे ही खाली बताया है, पर वो मेरे को बराबर मालूम नहीं करना
है,
ठीक है ना। आगे कौन सी खाली कौन सी एक
कहाँ पर
आठ
नंबर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ सुगमम लिखा है केवल
खाली एड करना है, एक इतना
किसमें ऐड करना
है मालूम नहीं पड़ा, वो मैंने बराबर लिख किया है
आठ नंबर पर सुगमम लिखा है केवल,
तो आठ नंबर की एक लाइन बना दी कौन सी कैसे
बोधी गए थे मैदम सुतम वो है ही नहीं जाने दो, वो तो अभी हो चुका है आगे बढ़ो। हाँ कौन से पेज पर थे हम, हाँ 177 तो कहते अंतमूत्तम किट्टी गद जोगो होदी गयत्थम एदम सुत्तम, ये होदी यहाँ पर 177 पर है। गयत्थम एदम सुत्तम उसमें से निकाल दो, समझ में आया ना, ये पहले 174 पर जो लिखा है वो 177 का है जो हम ढूंढ रहे थे। सूत्र में जो गयत्थम एदम सुत्तम लिखा है ना वो वहां नहीं चाहिए, वो उसके नीचे चाहिए, वो उन्होंने बताया ना यह सूत्र गतार्थ है नीचे डालने को बोला, तो ये संपही के पहले वो ले लेना, गयत्थम एदम सुत्तम है वो नीचे जोड़ देना, उसको साइन करके वहां नीचे ले आना, उसको ऊपर होदी तक रखना और गयत्थम एदम सुत्तम नीचे ले आना, ख्याल में आई ना बात, तो हिंदी में यह सूत्र का अर्थ है बराबर होता है, सूत्र का अर्थ है अंतर्मूर्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होता है, यह सूत्र गतार्थ है, यह अभी उन्होंने बताया था ऊपर, इसलिए गतार्थ है, गत अर्थ उसका अर्थ बता चुके। अब कृष्टिगत योग का वेदन करने वाला यह संयोग केवली के अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित भाव से वेदन करता है या अन्य प्रकार से वेदन करता है, वो एक उतना का उतना योग रहता है कि क्या होता है, इस तरह इस प्रकार के आशंका का निराकरण करेंगे। यथा प्रथम समय में कृष्टि वेदक कृष्टियों के असंख्यात भूभाग का वेदन करता है, पुनः दूसरे समय में प्रथम समय में वेदी हुई कृष्टियों के अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग विषय कृष्टियां, असंख्यात भाग विषय का नहीं असंख्यात भाग विषय का असंख्यात जो भाग विषय है कृष्टियों असंख्यात ही है। दूसरे समय में प्रथम समय में वेदी गई कृष्टियों के अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग विषय कृष्टियां अपने स्वरूप को छोड़कर मध्यम कृष्टि रूप से वेदी जाती है, इस प्रकार प्रथम समय संबंधी योग से दूसरे समय संबंधी योग असंख्यात गुणहीन होता है, यानी प्रति समय असंख्यात गुणहीन रूप से योग वेदा जाएगा, इस प्रकार तृतीयादि समयों में भी जानना चाहिए, समझ में है ना, कृष्टियां जो बनाई है ये हम योग इस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो मध्यम रूप से उसका उदय चलेगा, और वो भी दूसरे समय में उसके भी असंख्यात अभाग असंख्यात अभाग इतना उदय में आएगा, उसमें भी बीच वाला मध्यम लेना बताया ना उन्होंने, असंख्यात बहुभाग का वेदन करता है लिखा, असंख्यात भाग छोड़कर असंख्यात बहुभाग का वेदन किया था। इस प्रकार तृतीय आदि समयों में भी जानना चाहिए, इसलिए प्रथम समय में बहुत कृष्टियों का वेदन करता है, दूसरे समय में विशेष हीन कृष्टियों का वेदन करता है, इस प्रकार अंतिम समय तक विशेष हीन क्रम से पृष्ठियों का वेदन करता है ऐसा कहना चाहिए।
हम यहाँ भी ऊपर से करेगा वेदन जो उल्टी लाइन कभी तो कम होगा,
नीचे यो हीन की तरफ पड़ेगा, हाँ, हीन की तरफ पड़ेगा,
उल्टा कर
फिर भी हमने कर्मों को दोनों तरफ से छोड़ा है,
हाँ,
वैसे यहाँ पर भी दोनों तरफ छोड़ना मध्यम रूप से ही लेना, परंतु वो हीन की तरफ ले लेना है तो मध्यम रूप से ही, यानी क्या ना मध्यम रूप से हो जाता है, मध्यम कृष्टि रूप से वेदी जाती है लिखा था।
नहीं पहले समय में जो कृष्टि वेदन में आ रही है वो इस पट्टी पर कौन सी है, नीचे वाली है ऊपर वाली है,
असंख्यात बहुभाग का जो लिखा है ऊपर ही है ना, नीचे की डायरेक्ट कैसे वेदन करेंगे? जैसे क्रोध को हमने पहले संग्रह पृष्ठ को लिया था वैसे, अथवा आगे लिखते हैं, प्रथम समय में स्तोक पृष्ठियों का वेदन करता है क्योंकि प्रथम समय में अधस्सन और उपरिम असंख्यात वे भाग विषय पृष्ठियां ही विनाश होती हुई प्रधान रूप से विवक्षित है। दूसरे समय में असंख्यात गुणी पृष्ठियों का वेदन करता है, या अथवा करके दूसरी प्ररोपना करें, क्योंकि प्रथम समय में विनाश को प्राप्त हुई पृष्ठियों से दूसरे समय में अधस्सन और उपरिम असंख्यात वे भाग से संबंध रखने वाली असंख्यात गुणी पृष्ठियों का विनाश करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से यह जीव पृष्ठिगत योग का वेदन करता है, क्योंकि प्रत्येक समय में मध्यम पृष्ठी रूप से परिणमन करने वाली पृष्ठियों की असंख्यात गुण रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है। मैंने उसका रेंज वो नंबर ऑफ जो वेदन में आ रही है उसमें जगने से उत्कृष्ट तक की जो रेंज है वो बढ़ती है। सके शंका, प्रथमादि समयों में क्रम से वेदी गई पृष्ठियों के जीव प्रदेश द्वितीयादि समयों में अपरिस्पंदन रूप से अयोगी होकर स्थित रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं मानते? तो उसका वेदन नहीं होता है ना, वो तो अयोगी रूप से स्थित है, ऐसा क्यों नहीं मानते हैं? जैसे कर्म वो तो अकर्म रूप होकर खिल जाते हैं, तो ये भी अयोगी हो जाते, ऐसा मानो? समाधान, नहीं, क्योंकि एक जीव में अक्रम से संयोग रूप और अयोग रूप परिणाम की प्रवृत्ति होने में विरोध आता है। शंकाकार तो ही क्या क्या शंका थी। तदनंतर प्रति समय अदस्सन और उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण पृष्ठियों को असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से मध्यम पृष्ठियों के आकार से परिणमा कर विनाश करता है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार का अर्थ सूत्र में नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में पृष्ठियों के असंख्यात बहुभाग का नाश करता है, इस प्रकार आगे कहे जाने वाले सूत्र में स्पष्ट रूप से इस अर्थ विशेष का संबंध देखा जाता है। यानी वो योग है वो मध्यम रूप से परिणमित होना ही उसका नाश कहेंगे। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक पृष्ठिगत योग का अनुभव करने वाले पृष्ठिका वेदक है ना, अति सूक्ष्म काय योग में विद्यमान, बाकी तो योगों का सूक्ष्म करके उसका नाश ही कर दिया, अब ये किसमें है तो अति सूक्ष्म काय योग में है। ऐसे संयोग केवली के उस अवस्था में ध्यान परिणाम कैसा होता है, उसको कौन सा ध्यान कहेंगे, ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। सूक्ष्म क्रिया परिवादी झाणम झायदी तथा सूक्ष्म क्रिया रूप अप्रतिपाती ध्यान को दिया था, प्रतिपाती नहीं वो अप्रतिपाती है, क्रिया और अ मिलकर या ही रहता है, इसे हम उसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, परंतु उसकी संधि ऐसे तोड़कर पढ़ेंगे हम तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जिसमें सूक्ष्म क्रिया रूप योग हो वह सूक्ष्म क्रिया तथा नीचे प्रतिपात नहीं होने से अप्रतिपात, अभी उसमें से उल्टा नहीं लौट कर आएगी, ऐसे तीसरे शुक्ल ध्यान को उस अवस्था में ध्याता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। दूसरा ध्यान कब कहा था? बारहवें के अंत में, और ये तीसरा तेरहवें के अंत में। शंका, इस ध्यान का क्या फल है? समाधान, योग के आश्रव का अत्यंत निरोध करना, यानी योग नष्ट ही हो जाता है ना इससे भी, इसका फल है। क्योंकि
एक प्रश्न है, तीसरा ध्यान बोल रहे ना उसको क्या अपने प्राति ये जो कृष्टि वेदक हुआ योग की कृष्टि का वेदक हुआ तब से बंद हुआ कृष्टिकरण कर लिया मतलब
सूक्ष्म क्रिया रूप में है तब से
वेदक जो हुआ
वेदक हुआ तब से क्या कहते हैं योग के आश्रव का अत्यंत विरोध ये अभी यहाँ एक ही आश्रव बाकी है योग नाम का वो भी सूक्ष्म किया है अब उसका अत्यंत नाश कर देना ही इसका फल है क्योंकि सूक्ष्मतर यानी अत्यंत सूक्ष्म काय परिस्पंद का भी यहाँ पर अन्वय के बिना निरोध देखा जाता है यानी ये अभी सूक्ष्म काय स्पंद जो है वो योग है उसका भी बिल्कुल पूर्ण नाश हो जाता है यहाँ पर कहा भी है तृतीयं काय योगस्य सर्वज्ञस्याद्भुतासिते योग क्रिया निरोधार्थं शुक्ल ध्यानं प्रकीर्तितम् काय योगी और अद्भुत स्थिति वाले सर्वज्ञ के सर्वस्य अद्भुतास्थिते योग क्रिया का निरोध करने के लिए तीसरा शुक्ल ध्यान कहा गया यानी वो सूक्ष्म योग में है उसका भी अभी अंतर्मुहूर्त में पूरा ही निरोध हो जाएगा शंका समस्त पदार्थों को विषय करने वाले ध्रुव योग उपयोग से परिणत केवली जिनमें एकाग्र चिंता निरोध का होना असंभव है इसलिए इष्ट होने से ध्यान की उत्पत्ति नहीं हो सकती प्रश्न क्या में है नितिन भाई क्या कहते हैं लक्ष्मी जी यहाँ क्या पूछ रहे ध्यान किसको कहना एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान उसका अर्थ क्या है हाँ एकाग्र होना तो केवली ऐसा कर रहे कि नहीं कह रहे
समस्त
तो केवली को एकाग्र चिंता निरोध है कि नहीं है नहीं है क्यों नहीं है सभी पदार्थ उपयोग रूप ध्यान है यानी हम तो हमें फैसिलिटी है कि इधर से उपयोग हटा उधर लगाओ केवली को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है यानी उपयोग ले आओ यहाँ से और वहाँ एकाग्र करो एकाग्र की बात ही नहीं संपूर्ण उपयोग रूप में ही है तो कहते उनके ध्यान ही नहीं होगा क्योंकि ध्यान का लक्षण हमने जाना है कि समस्त पदार्थों को विषय करने वाला ध्रुव उपयोग है उनका उपयोग हटता नहीं बस पूरे ही पदार्थ उपयोग रूप में है तो उनमें एकाग्र चिंता निरोध होना ही असंभव है तो उनको ध्यान क्यों कह रहे ये प्रश्न है समाधान यह कहना सत्य है क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों का साक्षात्कार किया है वो साक्षात जाने हैं प्रत्यक्ष जाने हैं और जो क्रमरहित उपयोग से परिणत है ऐसे सर्वज्ञ देव के एकाग्र चिंता निरोध लक्षण ध्यान नहीं है यानी जिस ध्यान को हम एकाग्र चिंता वाला ध्यान कहते वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह अभीष्ट है अभीष्ट यानी यही हमें इष्ट है यही हम बता रहे हैं किंतु अब ये किंतु लगाया योग के निरोध मात्र से होने वाले कर्माश्रव के निरोध लक्षण ध्यान फल की प्रवृत्ति देखकर ध्यान का फल क्या होता है एक तो आश्रव यानी संवर होता है और क्या होता है निर्जरा होता है यहाँ ध्यान के फल को देखते हुए उसको ध्यान कहा तो कहते योग का निरोध होने से यानी कर्माश्रव का निरोध लक्षण ध्यान फल की प्रवृत्ति को देखकर उस प्रकार के उपचार की कल्पना की है यानी ये ध्यान उपचार से कहा है इसलिए कुछ भी हानि नहीं है अथवा यह दूसरा प्रकार से अर्थ बताते हैं चिंता का हेतु होने से भूतपूर्व पने की अपेक्षा चिंता का नाम योग है योग के कारण वो चिंता होती थी उसके एकाग्रपने से निरोध करना एकाग्र चिंता निरोध है इस प्रकार के व्याख्यान का आश्रय करने से यहाँ ध्यान स्वीकार किया गया है इसलिए कोई दोष नहीं उस प्रकार कहा भी है अंतो मुहूर्त मध्यम चिंतावत्थानमेयवत्थुम्नि चदुमत्थानं झाणं जोगनिरोधो जिनाणं तु। यानी छद्मस्थ के लिए ध्यान की परिभाषा सर्वज्ञ के लिए अलग थी। क्या कहते देखो, छद्मस्थों का एक वस्तु में अंतर्मुहूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना ध्यान है। कौन सी वस्तु बताई? आत्मा के पर्वदात अनितिन इधर लिखो। ऐसा कुछ नहीं, श्रेणी में तो हमने देखा अर्थ से अंता अर्थांतर, व्यंजन से व्यंजनार्थ और योग से योगांतर, कहीं नहीं लिखा आत्मा में ध्यान करना करके। वितरागता सहित जान रहे, ये तो हम नीचे की भूमिका के लिए कहते हैं पर का, क्योंकि पर को जानते समय राग सहित जान रहे और यहाँ राग का उससे भेद ज्ञान करना है। और जब तक उसको राग सहित जानते रहे तब तक अपने वितरागी स्वभाव को भी नहीं जान रहे। तो वहां तो कहते कि पर का लक्ष्य छोड़ो और स्वसन्मुख हो जाओ, परंतु ध्यान का लक्षण क्या होता है? छद्मस्थों का एक ही वस्तु में, क्योंकि हमें भी आर्थर अर्थ ध्यान क्या हो रहा है, एक ही वस्तु में कर रहे ना ध्यान। अंतर्मुहूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना ध्यान है, परंतु केवली जिनों का योग का निरोध करना ही ध्यान है। केवली भगवान के लिए यही ध्यान का, ये तो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर में तो योग भी नहीं है, फिर भी वहां वो उसकी बात में करेंगे। इसलिए ठीक कहा है कि योग का निरोध करने वाले केवली भगवान कर्म के ग्रहण की सामर्थ्य का निरन्वय निरोध करने के लिए। ये कर्म कौन सा कर्म का ग्रहण हो रहा है?
ये जो है कि नो कर्म और दूसरा प्रदेश,
यानी योग के कारण ही कर्म का ग्रहण होता है। कर्म का जो ग्रहण होता है बंद होता है, उसका कारण क्या है? तो हमने पहले देखा था कषाय और योग, यानी मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय सबको मिलकर कषाय कहा था, और ये योग, ये उसके दो कारण है। इसमें तो योग तो कषाय तो चले गए, तभी योग कर्म के आश्रय का कारण वहां पड़ा था। साता वेदनी आ रहा था ना, भले एक समय का परंतु वो था, अभी वो कारण का समूल नाश हो गया। तो निरन्वय यानी कुछ बाकी रखे बिना निरोध करने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, यानी सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती संज्ञक यानी नाम वाला परम शुक्ल ध्यान, ऐसे लक्षण वाले ध्यान को ध्याते हैं। यहाँ कर्म के ग्रहण की बात की है, भले वो औदायिक होता है, तेजस भी होता है, सब कुछ हो रहा है, यानी योग का परिपूर्ण नाश यहाँ की बात चल रही है। इस प्रकार ध्यान करने वाले परम शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म निर्जरा का पालन करने वाले, ये तो हो ही रही ना निर्जरा, तथा स्थिति कांडक का और अनुभव कांडक का क्रम से पतन करने वाले, अभी भी स्थिति कांडक और अनुभव कांडक चल रहे हैं, इस परम ऋषि के योग शक्ति क्रम से हीन होती हुई संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में पूरी तरह से नष्ट होती है। अंतिम समय तक उसको सयोग कहा है, परंतु वो क्रम से हीन 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 होती है। इस प्रकार इस बात के प्रतिपादन करने को करने की इच्छा से दुखी दिख नहीं रहा, आगे के सूत्र को कहते हैं। किट्टीनम चरिम समय असंख्येज्य भागे नासेवी, नीचे दिखे प्रति में असंख्येज्य भागे नासेवी। पृष्टि वेदक संयोग केवली जीव पृष्टियों के अंतिम समय में असंख्यात भूभाग का नाश करता है। पृष्टि वेदक के प्रथम समय से लेकर समय समय में यानी प्रति समय पृष्टियों के असंख्यात वे भाग का असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से क्षय करके, यानी कितने भाग का नाश होता है? पहले समय में वो असंख्यात होगा, दूसरे समय में उसे असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा पृष्टि का नाश करता हुआ संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में पृष्टियों के असंख्यात वो भाग का नाश करता है। उसके बाद योग प्रवृत्ति का अत्यंत उच्छेद देखा जाता है, यानी परिपूर्ण नाश। योगी नहीं रहा तो उसकी योग के कारण होने वाली प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी। इस प्रकार यह यहाँ सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। अब नाम गोत्र और वेदनीय कर्मों के अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करता हुआ जितना संयोगी काल शेष है, यह अंतिम स्थिति कांडक की बात है, और सब अयोगी काल है तत्प्रमाण स्थितियों को छोड़कर। गुणश वो पहले तो योग की बात बताई पूरी, अब कहते नाम गोत्र और वेदनीय का द्विचरम स्थिति कांडक तक की बात पहले बता चुके थे, अब जो अंतिम स्थिति कांडक कितना लेंगे तो बचा हुआ संयोगी का और अयोगी का काल बाकी छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो एक एक निषेक रूप से जाएगा और उसको एक कांडक रूप से ग्रहण करेंगे। तो गुण श्रेणी शीर्षक के साथ उपरिम सब स्थितियों को ग्रहण करता है, यानी गुण श्रेणी का टॉप मोस्ट पोर्शन भी और ऊपर का भी सब अंतिम कांडक रूप से ग्रहण किया स्थिति कांडक। उसी समय प्रदेश पुंज का आकर्षण करके उदय में अल्प प्रदेश पुंज को देता है, अनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है, यानी वहां पर भी गुणश्रेणी रूप से देता है। ये कांडक का द्रव्य भी नीचे गुणश्रेणी रूप से दिया जाता है। इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ स्थिति कांडक की जघन्य स्थिति से अधस्तन अनंतर स्थिति के प्राप्त होने तक जाता है। स्थिति कांडक की जघन्य स्थिति से, ये स्थिति कांडक जितना प्राप्त किया था उससे अधस्तन उसके नीचे वाली स्थिति तक असंख्यात गुण, कांडक में वो असंख्यात गुणा नहीं दिया जाएगा, उसके नीचे के स्थिति तक असंख्यात गुणा दिया जाएगा, यानी जहां तक असंख्यात गुणा है वही अभी का गुण श्रेणी शीर्ष कहलाए। ये बात हमने पहले भी देखी थी ना वैसे। तो कहते यहाँ 390 नंबर करना, बीच का नंबर गायब हो गया। अब यही गुण श्रेणी शीर्ष हो गया, इस गुण श्रेणी शीर्ष से स्थिति कांडक की जो जघन्य स्थिति है उसमें असंख्यात गुणा देता है, यानी कांडक के अंदर भी द्रव्य अभी दिया जाएगा क्योंकि पहली फाली दूसरी फाली तीसरी फाली है अभी, तो उसके नीचे में तो असंख्यात गुणा है और ऊपर हीन 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 दिया जाएगा, और ऊपरी मनंतर स्थिति से लेकर विशेषहीन प्रदेश पुंज का निक्षेप करता हुआ पुरानी गुण श्रेणी शीर्ष तक निक्षेप करता जाता है। विशेषहीन और पुरानी गुण श्रेणी से लेकर ऊपरी मनंतर स्थिति में असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज देता है, और उससे आगे सर्वत्र विशेषहीन प्रदेश पुंज निक्षेप करता है, यानी वो पुरानी गुण श्रेणी का शीर्ष था ना, अब ये नया गुण श्रेणी का शीर्ष नीचे आ गया, वहां तो असंख्यात गुणा दिया पुरानी गुण श्रेणी तक उसके फिर असंख्यात गुणाहीन प्रदेश पुंज दिया और उसके ऊपर भी विशेषहीन दिया, अंतिम स्थिति कांडक से दिया।
तो वो यहाँ पाली वाली नहीं है,
पाली ही है ना।
हाँ
देखो ये ऐसी गुण श्रेणी थी और ऐसा ऊपर का द्रव्य था, अभी इसको इतना पूरा ही कांडक रूप से ग्रहण किया, कांडक रूप से ग्रहण किया तो यहाँ तक तो असंख्यात गुणा ये गुण श्रेणी के रूप में दिया, ऊपर जितना माल दिया पहले निषेक में तो असंख्यात गुणा दिया ही दिया, ये इसके वो टॉप मोस्ट जो यहाँ का निषेक था तो असंख्यात गुणहीन रूप से इस तरह से दिया है और ऊपर विशेषहीन दिया, यानी यहाँ का जो नया गुण श्रेणी है वहां से एक गुपुच्छा बनेगी, उसके लिए जितनी साइड में आवश्यक है उतना दिया। नहीं 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 अभी अभी ऐसा ही है, उसको कहेंगे भले हम, परंतु इसकी एक गोपुच्छा हो जाएगी।
मुझे नीचे गुण श्रेणी बन गई,
ये गुण श्रेणी है
और ऊपर सबसे पहले जो स्थिति कांडक है
ये पहले वाली गुण श्रेणी थी, ये पहले वाली गुण श्रेणी थी।
इसको तो कांडक ले लिया।
हाँ कांडक ले लिया ना, परंतु उसमें द्रव्य कितना दिया उसकी बात, पुराने गुण श्रेणी तक असंख्यात गुणहीन शीर्ष तक और उसके ऊपर विशेषहीन, यानी ये पूरा एक गोपुच्छा ऐसा हो गया। पुराने गुण श्रेणी शीर्ष को हमने गोपुच्छा में बना दिया उसको, यानी यहाँ ये गुण श्रेणी शीर्ष यहाँ दिखेगी और उसके ऊपर इस तरह से दिखेगी। आप देखना जरा घर जाके वो संदृष्टि देखना लब्धि से, ये पढ़कर अभी उसमें पढ़ो आपको मजा आएगा। यहां से लेकर गलित शेष गुण श्रेणी हो जाती है, ये जो नीचे की गुण श्रेणी बनी है ना, अभी ये कितनी है, सयोगी काल, रिमेनिंग काल और अयोगी काल। अभी उसमें से एक एक निशे गलेगा, उतनी स्थिति भी बाकी है उस जीव को मुक्त जाने के लिए, ये इसको गलित शेष कहा। इस प्रकार अंतिम स्थिति कांड की द्विचरम फाली हो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, फाली तक ले जाना चाहिए। यानी द्विचरम फाली तक ऐसा ही होगा। अभी रुकेंगे हम यहाँ पर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो।